ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने अपनी अवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत सुंदर बात बताई है। बाबा ने कहा कि ये बेहद का ड्रामा है और ड्रामा की स्मृति से सदा खुश रहना है, खुशी में रहना है। फिर दूसरी बात बाबा ने कहा, कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, जिसके लिए बाबा ने उदाहरण दिया कि अगर लखपति से ककपति भी बन जाते हैं तो बच्चों को ये ध्यान रखना है कि हमारे भविष्य क्या प्राप्ति हो रही है, इन बातों का भी चिंतन नहीं करना है। कई बच्चे बाबा को लिखते हैं, तूफान आते हैं, ये होता है, ये नुकसान हुआ है, तो बाबा ने कहा कि हम भविष्य में क्या प्राप्त करने वाले हैं, उस नशे में रहना है, उस खुशी में रहना है। फिर बाबा ने विशेष ये भी ध्यान खिंचवाया कि तुम बच्चे आते हो बाबा के पास ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरने के लिए, लेकिन चेकिंग करनी है कि झोली में कहीं छेद तो नहीं है, झोली भरते जा रहे हैं और छेद के कारण निकलता तो नहीं जा रहा है। तो अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 3 मार्च 2025, 3/3/2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी होगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं, उनकी पूजा भी अधिक होती है। मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं, उनकी पूजा भी अधिक होती है। प्रश्न है, कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है, हर्षित रहने की युक्ति क्या है? कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है और हर्षित रहने की युक्ति क्या है? इसका उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं, भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे, विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे ही, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं तो हर्षित रहेंगे। बाबा ने कहा दुनिया ही विघ्नों की, विघ्न तो आएंगे ही, लेकिन इस दुनिया में हम थोड़े दिन के लिए हैं, तो बाबा कहते फिर वो खुशी रहेगी। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं तो हर्षित रहेंगे। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग रे, ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है। साकार बाबा के टाइम पर अमृत वेले गीत बजता था, जाग सजनिया जाग। तो बाबा कहते हैं ये गीत बहुत अच्छा है, गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है। ये भी बच्चों को समझाया है कि जब तुम ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते, ऊपर से आते तो डायरेक्ट आते हैं, सीधा सतयुग में जाए, और जब जाते हैं तो वाया सूक्ष्म वतन से जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी बच्चों को समझाया है, तुम जब ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना। क्यों सूक्ष्म वतन होकर जाना है? क्योंकि अपना सारा हिसाब किताब सूक्ष्म वतन में ही चुकतु करके जाना है। अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखलाते हैं। सत्युग त्रेता में तो इस ज्ञान की बात ही नहीं रहती। सत्युग त्रेता में ना सूक्ष्म वतन है ना ये ज्ञान है, लेकिन द्वापर से भी सूक्ष्म वतन का ज्ञान नहीं है। बाबा अपना कार्य जरूर कराते हैं, साक्षात्कार कराते, लेकिन सूक्ष्म वतन का ज्ञान नहीं होता है। ना कोई चित्र आदि है। भक्ति मार्ग में तो अथाह चित्र है। देवियों आदि की भी पूजा बहुत होती है। दुर्गा काली सरस्वती तो है ही एक, परंतु नाम अलग अलग रख दिए हैं। है तो एक ही ना, नाम दुर्गा काली सरस्वती जगत अम्बा क्या क्या नाम रख दिए हैं। दुर्गा काली सरस्वती तो है ही एक, परंतु नाम कितने रख दिए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, जो अनन्य होंगे, तो उसके लिए बाबा बता रहे हैं कि द्वापर में उनकी पूजा भी अच्छी होगी। कभी कभी बाबा बताते ना, कई कई ऐसे देवी देवताओं की है जिनकी विधि पूर्वक पूजा होती है। कई हैं जो साल में एक बार होती है, कईयों की केवल नाम मात्र होती है। थोड़ा सा जाएंगे और से ऐसे दर्शन करके सिर झुका के चले आएंगे। तो बाबा बता रहे हैं राज, जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा भी जास्ती होगी। तुम जानती हो कि हम ही पूजे से पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। जब द्वापर से पुजारी बनते हैं तो फिर बाबा की भी पूजा करते हैं, साथ साथ अपनी पूजा भी करते हैं। ये बाबा भी तो नारायण की पूजा करते थे ना। वंडरफुल खेल है। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है, वैसे ये भी बेहद का नाटक है। इनको कोई भी जानती नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज है। इस दुनिया में कितने अथाह दुख हैं। तुम जानती हो कि अभी बाकी थोड़ा समय है, हम जा रहे हैं नई दुनिया में। तो बाबा पक्का कराते, जब ये कॉन्शियस रहेगी, ये छोटी छोटी बातें जो है वो बुद्धि से निकलती जाएंगी। बाकी थोड़ा समय है, हम जा रहे हैं नई दुनिया में। भविष्य की खुशी रहती है तो वह इस दुख को उड़ा देती है। दुख की छोटी छोटी बातें कैसे खत्म होती है? जब भविष्य की बातें याद रहती, भविष्य की खुशी रहती है तो वह इस दुख को उड़ा देती है। लिखते हैं बाबा बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। कई कई बच्चे जब ज्ञान में आए तो पुराने कई जन्मों का हिसाब किताब है, कई विघ्न आए, घाटा पड़ा, तो लोग तो उनको कहते थे कि आप ब्रह्मा के पास गए और तभी ये घाटा पड़ा। लेकिन बाबा ने राज बताया, ये घाटा कोई अभी का नहीं है, कोई पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। तो बाबा को लिखते थे कि बाबा को कहते थे, लिखते हैं बाबा बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है, परंतु बाप कहते हैं कुछ भी विघ्न आए, आज लखपति हो कल कखपति बन जाते हो। बाबा देखो कितना अच्छा ऐसे निडर होके बता रहे हैं, आज लखपति हो कल कखपति बन जाते हो, तो तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है। ये है ही रावण की आश्री दुनिया। चलते चलते कोई न कोई विघ्न पड़ेगा ही, पक्का कर दिया। कुछ भी को विघ्न आए नहीं तो ब्राह्मण जीवन के अंदर कई प्रकार के विघ्न आते हैं। बाबा कहते चलते चलते कोई न कोई विघ्न तो पड़ेगा ही। इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अथाह सुखों में जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, कल सांवरा था, गांवरे का छोरा था। अब ब्रह्मा बाबा खुद भी बोले, कल मैं क्या था, गांवरे का छोरा था। शिव बाबा ने भी कहा, लेकिन बाबा खुद भी कह रहे हैं, बाबा खुद भी कहते हैं ना, कल सांवरा था, गांवरी का छोरा था, अभी बाप हमको नॉलेज दे गोरा बना रहे हैं। तुम जानती हो कि बाप बीज रूप है, चैतन्य है, सत्य है, उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह ऊंच से ऊंच रहने वाला है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। हम सब जन्म मरण में आते हैं, वह रिजर्व्ड है। बाबा के लिए आज ये शब्द बाबा ने देखो पहले से बोला है, लेकिन हमको याद ही नहीं होगा कि बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा शिव बाबा रिजर्व्ड है, वो जन्म मरण में नहीं आता। अगर वो जो आ जाए तो फिर पतितों को पावन कौन बनाएगा। तो बाबा कहते हैं पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, हम सब पुनर्जन्म में आते हैं, वे रिजर्व्ड हैं। उनको तो अंत में आकर सबकी सदगति करनी है। तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। भक्ति में तो क्या क्या गीत गाए, वारी जाऊंगी बलिहारी जाऊं वारी जाऊं, क्या क्या बोला है। तो बाबा कहते भक्ति में गए ना कि जब आप आएंगे हम आप पे वारी जाएंगे। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, भक्ति में भी कहते ना मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो ऐसे कहते रहते ना, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, हम बाबा के साथ ही जाएंगे। ये है ही दुख की दुनिया, कितना गरीब है भारत। कितना ऊंच महान था, फिर गरीब बन गया, फिर अभी फिर से अच्छा अमीर बनता जा रहा है। बाप कहते हैं मैंने भारत को ही साहूकार बनाया था, फिर रावण ने नरक बनाया है। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, गृहस्थ व्यवहार में भी तो बहुत रहते हैं। अब आते थे बाबा के पास, आते थे बाबा से मिलने आते थे, लेकिन रहना तो परिवार में है ना। तो बाबा कहते यहाँ तो सन्मुख हो लेकिन रहना तो अपने परिवार में है। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, गृहस्थ व्यवहार में भी बहुत ही रहते हैं, सबको यहाँ तो नहीं बैठना है। कई कहेंगे हम तो यहीं रह जाए, अरे यहाँ बैठ करके क्या करोगे। बाबा कहते थे आओ तपस्या करो, बादल भरो, फिर जाकर बरसो। तो बाबा कहते हैं सबको तो यहाँ तो नहीं बैठना है, गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल रंगीन कपड़े पहनो। कौन कहता है कि सफेद कपड़े पहनो। क्या होता था शुरू के अंदर, अभी भी बाबा ने सब बच्चों को छुट्टी दी हुई है, क्लास में आते तो क्लास की ड्रेस है सफेद, जैसे स्कूल में जाते तो बच्चों की ड्रेस होती है, बाकी सारा दिन तो अपनी ड्रेस डालते। बाबा हमेशा कहते थे रंगीन कपड़ा पहनो, लौकिक में रहो, जो भी करना है करो, लेकिन बाबा को याद करो। तो बाबा भी आज क्या कह रहे हैं, भल रंगीन कपड़े पहनो। कौन कहता है कि सफेद कपड़े पहनो। बाबा ने कभी किसको कहा ही नहीं है। अब लौकिक में जॉब करते विदेशी भाई बहने जब जॉब करते हैं, क्लास में आते हैं तो वो सफेद डाल के आते हैं, और अपने जॉब पर जाते हैं तो फिर अपने रंगीन कपड़े जो उनकी ड्रेस वो डाल के जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा ने कभी किसको कहा ही नहीं है, तुमको तो अच्छा नहीं लगता तब सफेद कपड़े पहने। आके रंगीन कपड़े पहन के क्लास में बैठते ना, उनको खुद ही लगता हमने ये पहना, बाकी तो सारे सफेद पहन के बैठे, इसलिए बाबा ने थोड़ी कहा कि तुम सफेद डालो। क्लास में इनको अच्छा लगता हम सफेद डाले। तो बाबा कहते हैं तुमको अच्छा नहीं लगता है तब सफेद कपड़े पहने हैं, यहाँ तुम भल सफेद वस्त्र पहनकर रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। उस ड्रेस में रहते हैं, उस सोसाइटी में रहते हैं, उसी रूप में रहते हैं, तो वो लोग औरों को भी ज्ञान दे सकते हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि इस ज्ञान के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं त्याग करना है। उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हो। माताएं अपने पति को भी समझाती हैं, भगवानों वाच्य पवित्र बनना है, देवताएं पवित्र हैं तब तो उनको माथा टेकते हैं, पवित्र बनना तो अच्छा है ना। अभी तुम जानते हो कि सृष्टि का अंत है, जास्ते पैसे क्या करेंगे। आजकल कितने डाके लगते हैं, पैसा जास्ती है तो भी नुकसान है। डाका तो छोड़ो, आजकल गवर्नमेंट के भी रूल बदलते जाते हैं। तो बाबा कहते जमा करते रहेंगे करते रहेंगे, तो कभी कभी कहते ना किसकी दबी धूल में किसकी राजा खाए, किसी की चोर लूट जाए और किसकी ऐसी चली जाए। तो बाबा कहते जास्ती पैसे क्या करेंगे। बाबा के बच्चे तो बहुत समझदार हो गए, जितना चाहिए उतना रखते, बाकी तो सेवा में लगाते रहते हैं। जास्ती पैसे क्या करेंगे। आजकल कितने डाके लगते हैं, रिश्वतखोरी कितनी लगी पड़ी है। ये अभी की ये गायन है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, सफली होगी उनकी जो ईश्वर अर्थ लगाए, सफली होगी उसकी जो धनी के नाम खर्चे। धनी तो भी तुम्हारे सन्मुख है ना, समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम सफल कर देते। अब समझदार की निशानी कि समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम सफल कर देते हैं। मनुष्य तो सब पतितों को पतित पतितों को दान करते हैं, यहाँ तो पुण्य आत्माओं का दान लेना। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, पतितों का लेते हैं तो उसमें वो नहीं। बाबा कहते थे ब्राह्मणों का ही यहाँ पावन बन रहे हैं, उनका ही वो दान करते हैं। पतितों के लिए कहीं आते थे तो बाबा कहते थे लिटरेचर में कर दो, फलानी जगह सेवा कर दो, प्रदर्शनी लगा दो, ये उसमें लगाओ, लेकिन ब्राह्मणों का ही बच्चों के लिए लगता है। तो बाबा क्या कहते हैं, यहाँ तो पुण्य आत्माओं का दान लेना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं है। तुम हो पुण्य आत्माएं, तुम ही पुण्य का काम करते हो। ब्राह्म ये मकान आदि बनाते हैं, वह भी तुम ही रहते हो। बाबा मकान बनवाते थे, बाबा कहते थे मेरे को तो रहना ही नहीं है। पता है ना कि जब बाबा के टाइम पर ये मकान बने, बाबा को कहा गया कि नए कमरे में रहो, बाबा ने कहा मैं तो पुराने ही कमरे में रहूंगा, ये सब कुछ है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते मकान आदि बनते किसके लिए, वो बच्चों के लिए बनते हैं। ये मकान बनाते हैं, वह भी तुम ही रहते हो। पाप की तो कोई बात ही नहीं है, जो कुछ पैसे हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्चे करते रहते हैं। अपने पेट को भी पट्टी बांध कर कहते बाबा हमारी एक ईंट भी इसमें लगा दो तो वहाँ हमको महल मिल जाए। उस समय कई बांधेली माताएं थी, बाबा के पास भेज देती थी, 10 रुपया भेज देती थी, 1 रुपया भेज देती थी और कहती थी बाबा मकान बन रहा है इसमें हमारे नाम की भी एक ईंट लगा दो। तो ईंट लगेगी तो उनको भविष्य में क्या मिलेगा, बहुत बड़ा महल मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं अपने पेट को भी पट्टी बांध कर कहते हैं बाबा हमारी एक ईंट भी इसमें लगा दो तो वहाँ हमको महल मिल जाएंगे। कई तो ऐसे भी होते थे, अभी भी ऐसे हैं, देखते हैं बहुत पैसा है, बाबा के घर में ये काम चल रहा है और पूछ सोचते रहेंगे दे या ना दे, दे या ना दे, सोचते रहते। अब सोचते रहेंगे तो क्या होगा, सोच सोच के सब खत्म हो जाता है। तो जो समय पर कर देता है उसका फिर भविष्य भी उतना ऊंची बनता है। तो बाबा कहते हैं कितने समझदार बच्चे हैं, पत्थरों के एवज में सोना मिलता है, समय भी बाकी थोड़ा है। तुम कितनी सर्विस करते हो, प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते हैं, सिर्फ बच्चियां तीखी हो जाए। उस समय बच्चियां थोड़ा ज्ञान सुनाने में संकोच करती थी ना, तो बाबा को लगता था कि ज्ञान सुनाने में होशियार हो जाए, सिर्फ बच्चियां तीखी हो जाए। बेहद के बाप का बनती नहीं है, मोह छोड़ती नहीं है। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, अब फिर तुमको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये बातें और कोई समझा न सके। सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप कहती है, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को समझाते रहो। ये धंधा देखो कैसा है, कौन सा धंधा है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, औरों को समझाना। तो बाबा कहते देखो ये धंधा कैसा है, खुद भी धनवान स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है। कौन सा धंधा, कि स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, औरों को बनाना है, खुद भी धनवान बनना है, औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहना चाहिए, किसको रास्ता कैसे बताएं। ड्रामा अनुसार जो पांच चुहा वह ड्रामा। अब ड्रामा की पॉइंट पे बाबा पक्का करें, ड्रामा अनुसार जो पांच चुहा वह ड्रामा, सेकंड बाय सेकंड जो होता है उनको हम साक्षी हो देखते हैं। बच्चों में बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे, मनुष्य दुख में त्राही त्राही करेंगे और तुम खुशी में ताली बजाते रहेंगे। जब भारत का विभाजन हुआ उस समय क्या हाल थे, लोग चिल्ला रहे हैं, त्राही त्राही हो रहा है, उनका सब कुछ लुट रहा है, लेकिन बाबा के बच्चे आराम से अंदर बैठे हैं, उनको पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या, और अंदर वो खुशी में नाच रहे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं था। तो बाबा ने कहा आगे चल करके भी यही होगा कि मनुष्य, बाबा ने कहा बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते, आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे, मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे, तुम खुशी में ताली बजाते रहेंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो जरूर नई दुनिया चाहिए, उसके लिए ये विनाश खड़ा है। पुराने को बदलने के लिए क्या चाहिए, नई दुनिया चाहिए, तो पुरानी को तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते नई दुनिया के लिए ये विनाश खड़ा है, ये तो अच्छा है ना। मनुष्य समझते हैं आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए, परंतु ये तो ड्रामा में नोंद है, लड़ेंगे कुछ कुछ करेंगे तब तो फिर नई दुनिया आएगी। दो बंदर आपस में लड़े, माखन बीच में तीसरे को मिल गया। तो अब बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो और सभी को रास्ता बताओ। रहना भी साधारण है और खाना भी साधारण है, कभी कभी खातरी भी की जाती। बाबा ने बच्चों को कैसे पाला, साधारण भी रखते थे और खिलाते भी कभी कभी साधारण थे, और कभी कभी बाबा बहुत बढ़िया अच्छी तरह से खिलाते थे। और अभी भी बाबा कितना खातरी करते हैं, इतनी खातरी तो बाहर लौकिक में भी कोई ना करे। बाबा बच्चों की कितनी खातरी करते, रोज कुछ ना कुछ बच्चों को भरपूर करते ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कभी कभी खातरी भी की जाती है। जिस भंडारे से खाया कहते हैं बाबा ये सब आपका है। बाप कहती है बच्चे ट्रस्टी होकर संभालो, बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ। फिर बाबा एक बात पक्का करा रहे, कहीं भी रहो कुछ भी करो तो बाबा को कहो बाबा सब कुछ आपका है, लेकिन बाबा कहेंगे इसको ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ कहने मात्र कहते थे, अभी मैं तुमको कहता हूँ ट्रस्टी बनो। भक्ति में क्या गया, सब कुछ तुम्हारा मेरा कुछ नहीं, सब कुछ अपना करते थे लेकिन गाते थे। परंतु बाबा कहते अभी तो बाप कहते हैं कि ट्रस्टी बनो, अभी मैं सन्मुख हूँ, मैं भी ट्रस्टी बन फिर तुमको ट्रस्टी बनाता। ब्रह्मा बाबा खुद भी ट्रस्टी बने और सबको ट्रस्टी बनाते हैं। जो कुछ करो पूछ कर करो, बाबा हर बात में राय देते रहेंगे। बाबा मकान बनाऊं ये करूं, बाबा कहेंगे भल करो। बाबा से पूछते थे बाबा ये मकान बनाए, तो बाबा कहते बनाओ, क्योंकि जब तक है तो मकान का सुख लो, ऐसे नहीं क्यों क्यों बनाए क्यों बनाए, विनाश हो जाएगा। बाबा भी यहाँ मकान बनवाते हैं तो किसके लिए बनवाते हैं, बच्चों के लिए बनवाते ना। तो बाबा कहते भल करो लेकिन ट्रस्टी होकर करो। बाबा मकान बनाऊं ये करूं, बाबा कहेंगे भल करो, बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना है। ये दूसरी बात पक्की। कई बाबा हमेशा कहते थे हिसाब किताब बनता है, पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना। आजकल पाप आत्माओं से लेन देन क्या करते हैं, उसको कहेंगे अच्छा तुम इतना पैसा दे दो, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस स्कीम में लगा देंगे, उस स्कीम में लगा देंगे, और स्कीम बनाने वाला भाग जाता है, फ्रॉड निकलता है, कितना पैसा चला जाता है। ये आजकल बहुत चल रहा है दुनिया के अंदर। तो इसलिए बाबा कहते हैं अज्ञानियों से पाप आत्माओं से कभी भी पैसे की लेन देन नहीं करनी। और बहुत हो जाता है लालच आ जाती है। लालच क्या आती है, होती है लालच, सोचेंगे पैसा मिलेगा सेवा मिलेगा, ना मिलेगा पैसा, जो लगाया वो गायब, और आपसी दुश्मनी, अपने आपसी व्यवहार खत्म, और सारा का सारा हिसाब किताब कड़ा हो जाता है। इस बात के लिए बाबा और दादी हमेशा पक्का कराते थे किसी भी स्कीम में पैसा नहीं लगाओ, किसी भी स्कीम के पीछे नहीं पड़ो। वो स्कीम आज है दो एक दिन लाभ मिलेगा और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा पक्का कराते हैं, बाबा हर बात में राय देंगे, बाबा मकान बनाऊं ये करूं, बाबा कहेंगे भल करो, लेकिन पाप आत्माओं को नहीं देना है। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करना चाहती है, तो क्या कर सकते हैं। कई बार होते हैं माँ बाप को, अभी भी होता है, बच्ची ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करना चाहती, बार बार आएंगे, नहीं इसको ज्ञान का सिखाओ, इसको योग सिखाओ। अब उसका ड्रामा में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, ड्रामा में पार्ट नहीं है। तो बाबा कहते थे ऐसे नहीं करो, करना चाहती तो भल करे, उसको जिस लाइफ में जाना जाए, लेकिन उसको ज्यादा फोर्स नहीं करो। तो बाबा क्या कहते हैं, तो कर भी क्या सकते हैं, बाप तो समझाते हैं तुम अपवित्र क्यों बनती हो, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो पतित बन पड़ते। कितना भी समझाओ नहीं है तकदीर में तो पतित बनेगी, फिर बाद में धीरे धीरे फिर आकर के ज्ञान में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप तो समझाती तुम क्यों अपवित्र बनते हो, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो पतित बन पड़ते हैं। अनेक प्रकार के केस भी होते रहते। कई बार माताएं आती है कहती है बहन जी योग लगाओ मेरा बच्चा ज्ञान में चले। अरे उसका ज्ञान में पार्ट होगा तब तो चलेगा ना, उसको चलना है तो फिर चलेगा, आप अपना पुरुषार्थ करो, लेकिन ड्रामा के हर सीन को भी तो देखते हुए चलना है ना। तो बाबा कहते अनेक प्रकार के केस भी होते रहते हैं, पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता है, खराब हो पड़ते हैं, माया भी बड़ी प्रबल है, वह भी काम वश हो जाते हैं, फिर कहा जाता है ड्रामा की भावी। बाबा कहते चलते चलते माया की जब प्रवेशता होती तो बाबा क्या कहेंगे, अब ऐसा कर दिया है तो उसको क्या कहेंगे, ड्रामा की भावी। इस घड़ी तक जो हुआ वह कल पहले भी हुआ था, चिंता नहीं करना, जो कुछ भी होता है वो कल पहले भी हुआ था। इसलिए बाबा कहते ड्रामा की सीट पर सेट रहो। नथिंग न्यू, अच्छा काम करने में भी विघ्न डालते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं। हमको तो तन मन धन से भारत को जरूर स्वर्ग बनाना है, सब कुछ बाप पर स्वाहा करेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि हम श्रीमत पर इस भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में है हम अपना राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं ये रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल तीन पैर पृथ्वी में खोल दो, ये रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल तीन पैर पृथ्वी में खोल दो, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी एवर वेल्दी बने। परंतु तीन पैर पृथ्वी के कोई देते नहीं। पहले तो इतना मुश्किल होता था कि कोई मकान भी देखने जाते थे वो ब्रह्मा कुमारी को नहीं देते थे, क्यों, ये जादू लगा देंगे, ये ऐसा कर देंगे, बहुत ऐसे होता था। अभी तो वो देते भी हैं, अभी तो ब्राह्मण भी अपनी अपनी जमीन होती है वो देते हैं, बाबा के लिए सेंटर बना दो। तो बाबा कहते हैं तीन पैर पृथ्वी के कोई देते नहीं है, कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी जादू करेंगी। पहले शुरू में जादू का बहुत कहते थे, जादू करेंगी, इनकी आंख की तरफ नहीं देखो, इनको नहीं देखो, और कभी कभी सुबह सुबह ब्रह्मा कुमार कुमारी सेंटर पर आ रहे हैं, किस कोई रास्ते में मिल जाए तो बस उसको भी ऐसे अजीब सा मानने लग जाते थे। फिर कहते थे भाई बहन बनाते, तो पहले ऐसी उनकी भ्रांतियां थी, और अभी तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, खुश भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बीके जादू करेंगी, भाई बहन बनाएंगी, तुम्हारे लिए ड्रामा में बड़ी अच्छी युक्ति रखी हुई है। भाई बहन को दृष्टि रख नहीं सकते, भल वो कह देंगे भाई बहन बना देंगी, बाबा कहते वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन तुम बच्चों के लिए ड्रामा में इतनी अच्छी बात है कि भाई बहन की कुदृष्टि हो नहीं सकती। आजकल तो दुनिया में कितना गंध है, बात मत पूछो, तो जैसे बाप को तरस पड़ा है ऐसे तुम बच्चों को भी तरस पड़ना चाहिए। जैसे बाप नरक को स्वर्ग बना रहे हैं ऐसे तुम भी रहम दिल बन बच्चों को बाप का मददगार बनना चाहिए। तो क्या बनना है, बाप का मददगार, लेकिन कैसे बनेंगे, रहम दिल बन करके। जैसे बाप को तरस पड़ा है ऐसे तुम बच्चों को भी रहम दिल बन बाप का मददगार बनना है। पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। बाबा के कई बच्चे ऐसे हैं, है थोड़ा भी होगा कहेंगे यहाँ सेंटर खोल देते हैं, गीता पाठशाला खोल देते हैं, बड़ा दिल उनका रहम दिल। कई हैं इतना पैसा है सोचते और भी जमा करते जाए, और भी जमा करते जाए, फिर बाद में पैसे की चिंतन में चले जाते हैं। तो बाबा क्या बताते हैं, पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। इसमें जास्ती खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ चित्र रख दो। बाबा हमेशा कहते थे शुरू में एक कमरे में चार चित्र रख दो, जो लोग आएंगे उनको सुनाते जाओ, सुनते सुनते और बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे सेंटर बढ़ जाएगा। इसमें सिर्फ चित्र रख दो, जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता जाएगा, वे आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, बाबा ने ऐसे भी देखा है। बाबा के टाइम पर तो कई बच्चे बहुत निश्चय बुद्धि थे लेकिन रहते दूर थे, तो उस समय क्या होता था, कोई साधन तो है नहीं, गाड़ी है नहीं, कुछ साधन नहीं है, कई तो पैदल चल के आते थे। जगदीश भाई का भी एग्जाम्पल है, कैसे रात को 2 बजे उठ करके वो अपने पैदल चल करके सुबह सुबह क्लास में पहुंच जाते थे। फिर गांव में कई बच्चे रहने वाले थे, वो क्या करे, आ नहीं सकते थे, तो उसके लिए बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, बाबा ने ऐसे भी देखा है रात को एक गांव से आते हैं, एक जगह थी गांव से आ जाते थे रात को, क्योंकि रात को क्या होता था, गांव वाले ना रात को 11-12 बजे तक काम करते हैं, देर से आते हैं खेती आदि करके, फिर आते हैं, फिर क्लास में नहीं आ सकते थे, वो सब गांव वाले इकट्ठे होकर के रात को ही सेंटर पर आ जाते थे, फिर सुबह मुरली सुनी और सब कुछ करके फिर वापिस चले जाते थे। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं, बाबा ने ऐसे भी देखे हैं रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भरकर जाते हैं, झोली ऐसी भी ना हो जो बहता रहे, है ना। बाबा कहते झोली में भी अंतर, एक है झोली में छेद, एक झोली ओवर भर देते वो भी बहता है। तो बाबा कहते झोली ऐसा ना हो जो बहता रहे, झोली ऐसी भी ना हो जो बहता रहे, वह फिर क्या पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं बेहद का वर्षा देने, कितना सहज ज्ञान है। बाप समझाते हैं जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है उन्हें ही पारस बुद्धि बनाना है। बाबा को तो बहुत खुशी रहती है, ब्रह्मा बाबा को बहुत खुशी रहती है, हमको क्या करना है, खुद भी पारस बुद्धि बनना, औरों को भी बनाना है। बाबा को तो बहुत खुशी रहती है, ये गुप्त है ना, ज्ञान भी गुप्त है। मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो हम फिर क्या कम बनेंगे। अब बाबा बच्चों को नशा चढ़ा रहे, जब मम्मा बाबा लक्ष्मी नाम बनते हैं तो बाबा कहते हम भी क्या कम बनेंगे क्या, हम भी तो बन सकते हैं, उनकी राजधानी में जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कितना सहज ज्ञान है। बाप समझाते हैं जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है उन्हें पारस बुद्धि बनाना है। बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है, ये गुप्त है ना, ज्ञान भी गुप्त है। मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो क्या हम नहीं बन सकते हैं, हम भी सर्विस करेंगे, ये बनते हैं तो हमको भी बनना है। जब ये बन सकते हैं तो लेकिन बनेंगे कैसे, याद से और सेवा से, हम भी सर्विस करते हैं। वहां फिर ये ज्ञान नहीं रहेगा, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा कहते नशा रहना चाहिए, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग बल से, अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहां फिर ये ज्ञान नहीं रहेगा, ये ज्ञान अभी के लिए है। अच्छा, अब इसके बाद मम्मा की भी मुरली है, मातेश्वर जी की भी मुरली है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार और उसके बाद प्यारी मातेश्वरी जी के महावाक्य सुनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। दूसरा, बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं, इस गुप्त खुशी में रहना है। बाप समान रहम दिल बनना है। अभी हम सुनेंगे आज का वरदान। आज का वरदान है, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता, जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द के, बाबा की हर महिमा में सागर शब्द यूज होता है, क्योंकि बाबा हर बात में हर चीज में संपन्न है। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता, जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ भी आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। कुछ किसी भी प्रकार की उलझन व विघ्न एक खेल अनुभव होगा, समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्म गुरु टीचर पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंध का वर्षा देता है। बाबा परमात्मा गुरु टीचर और पिता के संबंध में भिन्न भिन्न रूप का वर्षा देता है। देखो परमात्मा तीन रूप धारण कर वर्षा देता। मातेश्वरी जी के महावाक्य ऐसे बिल्कुल क्लियर होते थे। तो मम्मा कह रही है देखो परमात्मा तीन रूप धारण कर वर्षा देता है। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। अब पिता के साथ पिता का संबंध है और टीचर के साथ टीचर का संबंध है, गुरु से गुरु बने का संबंध है। मम्मा क्लियर कर रही है टीचर के साथ टीचर और स्टूडेंट का संबंध है और पिता के साथ बाप और बच्चे का है, गुरु के साथ हमारा गुरु जैसे का संबंध है। तो मम्मा बता रही अब पिता के साथ पिता का संबंध है, टीचर के साथ टीचर का संबंध है, गुरु से गुरु बने का संबंध है। अगर पिता से फारकती ले लो तो वर्षा कैसे मिलेगा? बच्चा अपने बाप को माँ बाप को छोड़ के चला जाएगा, कुछ भी करे फिर माँ बाप थोड़ी उसको वर्षा देंगे। तो मम्मा बता रही है कि अगर पिता से फारकती ले लो तो वर्षा कैसे मिलेगा? जब पास होकर टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे तब टीचर का साथ मिलेगा। स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा पढ़ता नहीं है तो टीचर भी उसको क्या साथ देगा? तो मम्मा बता रही है कि जब पास होकर टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे तब टीचर का साथ मिलेगा। अगर बाप का वफादार फरमानबरदार बच्चा हो, डायरेक्शन पर नहीं चले तो भविष्य प्रलब्ध नहीं बनेगी। बाप के लिए क्या है? वफादार और फरमानबरदार। बाप जो फरमान करते हैं उसको फॉलो करना है। अगर बाप का वफादार और फरमानबरदार बच्चा हो, डायरेक्शन पर नहीं चले तो भविष्य प्रलब्ध नहीं बनेगी, फिर पूर्ण सदगति का भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तीनों बातें मम्मा ने क्लियर करी। ना फिर बाप से पवित्रता का वर्षा ले सकेंगे। परमात्मा की प्रतिज्ञा है, बाप के रूप में कितनी बातें बताई, एक वफादार, दूसरा फरमानबरदार, तीसरा बोला प्रतिज्ञा। तो मम्मा बता रही है फिर बाप से पवित्रता का वर्षा, फिर पूर्ण सदगति को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। ना फिर बाप से पवित्रता का वर्षा ले सकेंगे। परमात्मा की प्रतिज्ञा है अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो तुमको 100 गुना फायदा दे दूंगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, कहते ना हम करेंगे करेंगे, मम्मा कहती कि सिर्फ कहने मात्र नहीं उनके साथ संबंध भी गहरा चाहिए। अर्जुन को भी तो हुक्म किया था ना कि सबको मारो, सबको मारो में सबको भूलो, देखी जितनी बातें हैं देखी संबंधी इन सबको बुद्धि से भूलो। अर्जुन को भी हुक्म दिया था ना कि सबको मारो, निरंतर मेरे को याद करो। परमात्मा तो समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, तो वो अपने वायदे को अवश्य निभाएगा। मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ निभाएंगे, बाबा कैसे अपना वायदा निभाएगा जब बच्चे भी बाप के साथ अपना तोड़ निभाएंगे, वो अपनी वायदे को अवश्य निभाएगा, मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ निभाएंगे, जब सबसे बुद्धि योग तोड़ एक परमात्मा से जोड़ेंगे, तब ही उनसे संपूर्ण वर्षा मिलेगा। आज का अव्यक्त इशारा है, सुन भी रहे हैं कि अव्यक्त इशारे का क्या है मुख्य हेडिंग, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपना। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है, जब सत्य बात के इतना लड़ेंगे जोश से बोले, अरे वही बात धीरे से भी तो बोल सकते ना। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो जरूर उसमें कुछ न कुछ असत्यता समाई हुई। जो जोश से बोल रहा ही है, आप ऐसे कर रहा है या कर रहे हैं, उसमें समझ जाओ कि वो बात बिल्कुल राइट नहीं है। तो इसलिए जो जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो जरूर उसमें कुछ न कुछ असत्यता समाई हुई है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, क्या भाषा है, मैं बिल्कुल सच बोलता, उसमें बोलने क्या जरूरत है, सच बोल रहा तो बोलो, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ। लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, कितना भी कोई कहे मैं सत्य बोल रहा हूँ, उसमें भी कुछ ना कुछ झूठ समाया हुआ है। तो बाबा क्या कहते, सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें हो कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता है। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने ये बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, उनको सारे दिन